विषय की बात बताई जाओ है कि उसको किस प्रकार से की ध्यान करना चाहिए सत्य चित आनंद घन ब्रह्म को। सत्य माने परमात्मा है, तो जितना परमात्मा के अस्तित्व को वर्णन करने वाले शब्द है उन शब्दों के द्वारा परमात्मा है यह खूब दृढ़ विश्वास करना चाहिए। यत्वक्षर मनिर्देशा न व्यक्तं परिपासते सर्वत्रगम चिंतन से कूटस्थ मतलं ध्रुम। ये गीता की 12वें अध्याय का 3रा श्लोक है। भगवान के सत्ता के विषय में कि भगवान है इसकी पुष्टि के विषय में शब्द है। इसका अक्षर होता है कि पहले इसके सगुण के ध्यान की बात ही, अब इसमें निर्गुण निराकार के ध्यान की बात है, इसलिए तू शब्द आया। ये तो अक्षर मनिर्देशन पहले अर्थ से दूसरा आवे वहां तू शब्द आवे। तू मन किंतु, तू मन तथा तथा कहकर के ये दूसरा प्रकरण बतलाया जा रहा है कि वो परमात्मा कैसा है। अक्षरम माने जिसका कभी क्षय नहीं हुआ है, विनाश नहीं हुआ है, उसको अक्षर कहते। अनिर्देशम जिसका किसी प्रकार से निर्देश नहीं किया जा सके कि परमात्मा ऐसा है, संकेत से भी नहीं बताया जा सके, उसको अनिर्देशम कहते हैं। अव्यक्तम माने जिसकी व्यक्ति नहीं, ईश्वर की व्यक्ति नहीं होती, वो अव्यक्त होता है, निराकार है। सर्वदेशी है, एक देशी नहीं, सर्वत्र गम्मन सर्वव्यापी। अचिंतन मन भी उसका चिंतन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हो तो उसका चिंतन करे, वो अव्यक्त है, असीम है, अनंत है, इसलिए उसका चिंतन नहीं हो सकता। कूटस्थ माने कूट की माफक है, सुशिष है और अचल। कूटस्थ और अचल दो शब्द देकर ये बात बतलाई है कि न वो चलता है न वो हलता है। जैसे पहाड़ जो हलता भी नहीं चलता नहीं, किंतु वो व्यक्त है, किंतु ये अव्यक्त है, निराकार है। ऐसे होते हुए उसमें चल अनुक्रिया नहीं है। जैसे आकाश, आकाश निराकार है और उसमें चलन क्रिया अनुक्रिया नहीं है। आकाश जड़ है, परमात्मा चेतन है। ध्रुव कहकर के वो सत्य स्वरूप है, इस प्रकार का भाव समझ करके उन्हें का जो ध्यान किया जावे, निष्काम भाव से उसके परी उपासना कहते हैं। इस प्रकार से उस परमात्मा की उपासना करे, यानी उसको ध्यान करे। सत्य चित्त दूसरा शब्द चेतन, तो चेतन कैसा है कि जैसे ये हमारा शरीर है, ये तो जड़ है, इसके मां आत्मा चेतन है। जानने वाला चेतन होता है, जानने में अवगोची जड़ होती है। तो परमात्मा चेतन ज्योति है, जड़ ज्योति नहीं। ये सूर्य चंद्रमा तारा बिजली अग्नि ये ज्योतियां है पर जड़ ज्योति वो परमात्मा सबसे परे की ज्योति है। यह बात भगवान ने गीता की ध्यान के 17 के श्लोक में बतलाई। श्लोक इस प्रकार से भी है कि ज्योति सामति पर ज्योति तमसा परमेक्षते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान जमी हृदय सरसम। वो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है और तमसा पर है और ज्ञान स्वरूप है और योग है जानने में आने के योग है और ज्ञान के द्वारा जाना जाता है और सबके हृदय में स्थित है। ज्योतियों का भी ज्योति है इसीलिए बताया जाता है कि जितनी ज्योतियां हैं उन सब का प्रकाशक होने से ज्योतियों का भी ज्योति। जैसे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारामंडल अग्नि बिजली ये सब ज्योतियां हैं वो परमात्मा इन सब का प्रकाशक। जड़ ज्योतियों के बीच के मामले ये अग्नि सूर्य आदि जो ज्योति है ये ग्राह्य है और इसको ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां है उसको ग्रहण करते हैं तो वो ज्योति दोनों जड़ होकर के वो उसका परे की ज्योति है। इंद्रियों के द्वारा प्रकाश जाने ज्यादा है इसलिए इंद्रियां उससे परे की ज्योति है यानी नेत्र इंद्री प्रकाश से परे की ज्योति है और इससे भी परे की ज्योति है मन। मन के द्वारा नेत्र जाना जाता है नेत्रों की ज्योति भी जानी जाती है। ये अग्नि आदि जो है ये भी नेत्रों से जाना जाओ है और नेत्र भी ये दोनों को मन जानता है सब इंद्रियों को मन जानता है और मन को कोई इंद्रिय नहीं जानती इसलिए वो जड़ ज्योतियों में वो परे की ज्योति है। और उससे भी परे की ज्योति है बुद्धि ज्योति कि बुद्धि के द्वारा मन का भी ज्ञान होता है वास्ते वो मन जो है उसे परे की ज्योति मन से भी बुद्धि है तो उसकी वह परे की ज्योति है और बुद्धि से भी जो परे है वो आत्मा है। बुद्धि से भी परे आत्मा है आत्म ज्योति है। इंद्रियां प्राणायाम इंद्रिय वे परमन मन सस्तु पराबुद्धि योग बुद्धि तत्पर स्पष्ट है। इससे गीता की 3 अध्याय के 42 के श्लोक में बताया है ये विषय जो है प्राण है शरीर है पांच भूतों को शरीर पांच भूत इनसे परे की ज्योति इंद्रियां है। इंद्रियां वास्ते पर है श्रेष्ठ है सूक्ष्म है बलवान है और इंद्रियां से भी पर श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म है सूम मन है और मन से भी परे सूक्ष्म और श्रेष्ठ और व्यापक बुद्धि है और बुद्धि से भी परे की ज्योति है सो आत्मा है। तो इन सबसे परे की ज्योति आत्मा है। आत्मा इस देह के बीच में दृष्टा साक्षी जो सबको जाना है इंद्रियों को मन को बुद्धि को इसलिए आत्म ज्योति सबसे परे की ज्योति है। उसके आगे ये सब ज्योतियां जड़ है और आत्मा जो जीवात्मा है वो एक प्रकार से सबसे परे की ज्योति होता हुआ भी जड़ के संबंध से थी जो एक जैसी सो बने हुए है इससे भी परे की ज्योति है सो ब्रह्म है परमात्मा है वो सबसे परे की ज्योति है। इसलिए वो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। संयोग है अविद्या मान अज्ञान और अंधकार इन सबसे वो पर है। वो ज्ञान स्वरूप है यानी चेतन स्वरूप है। ज्ञान माने चेतन है, ज्योति स्वरूप, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो चिन्मय तो चेतन स्वरूप है, बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान नहीं। यहां ज्ञान जो है तो उस ब्रह्म के चिन्मय स्वरूप का वाचक है। ये जानने के योग वो परमात्मा का स्वरूप है, उसको गीता की 13 अध्याय के 12 के श्लोक में ये के नाम से कहा है, येयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्तुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तमासुच्यते। वो ब्रह्म कैसा है उसका जानने के योग चीज है, उस जानने में आने वाले ब्रह्म के स्वरूप को जो बुद्धि विशिष्ट है, बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है, बुद्धि ग्राह्य है, ऐसे उस ब्रह्म के स्वरूप को भगवान कहते हैं मैं तुमको कहूंगा। और जिसको तुम जान करके यथार्थ रूप से समझ करके अमृत को प्राप्त होगा, वो अमृत ब्रह्म का ही वाचक है। वो कैसा है तो ब्रह्म का स्वरूप है, वो अनादि है और परम ब्रह्म है, उससे पर श्रेष्ठ और कोई भी चीज तो नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसको किसी प्रकार से सत्य या असत्य सबसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, वो सबसे पर है। और बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा साधन काल के मां साधक पुरुष उसको जानते हैं, बुद्धि मिश्रित ब्रह्म के स्वरूप को जो निर्विशेष है उसको नहीं। जान करके फिर उसको प्राप्त हो जाते हैं, वो प्राप्तनीय जो वस्तु है वो बुद्धि से परे की चीज है। बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है उस परमात्मा को लक्ष्य करा करके और फिर खुद शांत हो जाता है, फिर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। इस वास्ते उसको ज्ञान गम्य कहा। और वो सबके हृदय के मस्तिष्क है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में आत्मा रूप से स्थित हूँ, जो देह के मन जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है उस रूप में वो आत्म रूप से सब स्थित है। भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 20वें श्लोक के पूर्वाध में यह बात कही है कि है महात्मा गुड़ा के सर्व भूता सहित है, हे गुड़ा के सारे भूतों के हृदय में स्थित मैं ही स्वयं की आत्मा हूँ। तो वो आत्मा रूप से तीसर की वृत्ति में सूचित है। जैसे आत्मा निर्विकार है इसी प्रकार से परमात्मा निर्विकार है। संसार में 6 विकार है, उस 6 विकारों से आत्मा रहित है। 6 विकार कौन से विषय है कि एक तो उत्पत्ति और एक विनाश और एक क्षय और एक वृद्धि और अस्तित्व और एक परिणाम। जैसे ये हमारा शरीर है ये विकारी है, ये उत्पन्न होता है और नाश होता है और घटता भी है और बढ़ता भी है और इसका परिणाम हर वक्त होता रहता है, स्वास्थ्य परिणाम ही है। और उत्पन्न होकर के यो कायम है, इस वास्ते यो प्रतीत अस्तित्व भी है, किंतु ये क्यों विकार है। आत्मा में ये क्यों विकार नहीं, आत्मा विकार नहीं, तो यह बात भगवान ने गीता की 2वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया है।
ને જાય તે મૃતે વા કદાચ નાયણ ભૂતવા ભવિતા વા ન ભૂયે અજો નિત્ય શાશ્વત હોયમ પુરાણો ને હન્ન તે હન્ન માને શરીરે.
इसका अर्थ यह होता है कि यह आत्मा न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है. और यह आत्मा उत्पन्न होकर के कायम नहीं होता. उत्पन्न होकर के फिर कायम हुए शरीर की भांति ऐसा आत्मा नहीं है. आत्मा जो है तो अज्ञ है और नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता. क्यों विकारों से आत्मा रहित है? जब आत्मा ही क्यों विकारों से रहित है फिर परमात्मा तो है ही. जब दृष्टि चेतन ही विकारों से रहित है तो समष्टि चेतन तो निर्विकार है ही. जैसे घड़े को आकाश है और महाकाश है तो वास्तव में दोनों की एक ही जाति और एक ही स्वरूप है. घड़े की उपाधि से भी उनको भेद है कि आत्मा परमात्मा. दृष्टि आकाश और समष्टि आकाश, घड़े को आकाश दृष्टि आकाश और यो महान आकाश और समष्टि आकाश. इसी वास्ते ब्रह्म जो है तो महाकाश की जो है और आत्मा है वो घटाकाश की जो है. और घड़े के नष्ट होने पर फिर घटाकाश महाकाश एक ही है. इसी प्रकार से आत्मा को जो अज्ञान दूर होने के बाद में आत्मा परमात्मा से एक ही हो जाता. तो आत्मा तो चेतन है, आत्मा सत्य है और आत्मा चेतन है. शरीर जो है तो नाशवान है इसलिए नित्य है और जड़ है. शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो सत्य है और चेतन है और परमात्मा तो चेतन और सत्य है ही. परमात्मा को जो अंश जो आत्मा है वो भी चेतन और सत है. इसी प्रकार से उस परमात्मा को जो स्वरूप है आनंदमय है, आनंद स्वरूप है. इस आनंद स्वरूप को समझाने के लिए गीता में बहुत से श्लोक बतला है. सुखमा पंक्ति कंग तद बुद्धि ग्राजन तिंद्रियम ये यत्र न वायु चलती तत्र. भगवान ने गीता की छठी अध्याय के 21 श्लोक में यह बताया कि वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है. आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, अत्यंत सुख स्वरूप. जैसे की सीमा नहीं या आनंद की सीमा नहीं ऐसा वो परमात्मा का स्वरूप है. उसका अंत नहीं, उससे बढ़कर और नहीं. और बुद्धि ग्राजम मन शुद्ध हुई, बल विक्षेप से आवरण से रहित हुई बुद्धि, जो विशेष तीक्ष्ण जो बुद्धि है और अचल और शुद्ध पवित्र बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा समझ में आता है. जो परमात्मा का बुद्धि से मिश्रित जो स्वरूप है, बुद्धि विशिष्ट जो स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप बुद्धि के समझ में आता है. और समझ में आने के बाद वो फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है. फिर बुद्धि के साथ में भी संबंध नहीं रहता. और अतिंद्रिय माने इंद्रियों की पहुंच नहीं है, मन की भी पहुंच नहीं है, वेति यत्न तेवायन सिद्ध चलती चलत है। उस कोटि का साधक जिस काल में उस परमात्मा के स्वरूप का युक्ति माना अनुभव करता है, फिर उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस सिद्धांत से उस स्थिति से फिर ये विचलित नहीं है। तीव्र वैराग होने से ही ध्यानावस्था में वो परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, और समझ में आने के बाद वो परमात्मा एक ही भाव से में तल्लीन हो जाता है। जैसे भगवान ने गीता की पांचवें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया, पांचवें अध्याय के इसमें ऐसा बताया है, बाद सबसे अशक्त आत्मा बिंद तात्म यह सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख है मोक्ष मश्रुते। कैसा पुरुष उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है, परमात्मा का कैसा स्वरूप है ये बतलाया जाता है कि बाहर के जितने जो पदार्थ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि और भी जितने जो बाहर के पदार्थ आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि जितने जो माया के कार्य रूप पदार्थ है उनमें आसक्ति रहित पुरुष बाद सबसे तो अशक्त आत्मा विन्नति आत्मनीय सुखम, जो आत्मा के बीच में सुख अनुभव करता है, आत्मा ही स्वयं आनंद स्वरूप है, इस प्रकार से ध्यानावस्था के बीच में उसको परमात्मा के आनंद स्वरूप को जानता है। ज्ञान के सिद्धांत के मां परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है, ऐसे उस आत्मा के अंदर अपने अंदर उस परमात्मा के आनंद स्वरूप का ज्ञानावस्था में अनुभव करता है, ब्रह्म योगी आत्मा वह साधक को कहा कि कैसा वो साधक है, ब्रह्म योगी आत्मा है, ब्रह्म के मां जो एकता है वो ब्रह्म योग, और एकता में जैकी आत्मा तद्रूप हो गई है वो ब्रह्म योगी आत्मा सुखम अक्षम है। वो अक्षय सुख जो है जिसका खय नहीं होता, जो सत्य है नित्य है, ऐसे उस अक्षय अनंत ब्रह्म सुख को अपने अनुभव करता है, न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो उस ब्रह्म के बीच में एक ही भाव से विलीन हो जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है, यही ब्रह्म की प्राप्ति। इसी प्रकार से छठी अध्याय के 27 और 28 के श्लोक में उसे अन्य ब्रह्म के स्वरूप का साधन बतलाया है और उसकी प्राप्ति और उसका स्वरूप बतलाया है। प्रशांत मन संघीनम योगिनम सुख मुक्तम उपैति शांत रसम ब्रह्म भूतम अकलंकम मुंजन एवं सदात्मान योगी दिक्त कर्म से ब्रह्म संस्पर्श है मतंग तंग सुख मस्ते। इसका यह भाव है कैसा योगी उस अन्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात कैसे योगी को वो अन्य परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। शांत मन तुम जिनका मन शांत है, अच्छे प्रकार से शांत है, यानी विषय पर रहित है, चंचलता रहित जिसका मन है, और शांत रसम और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसमें विषयों की आसक्ति बिल्कुल नहीं है, वो अकलंकम कर्म से जो पाप है
उस पाप से भी रहित है। मन विक्षेप आवरण सभी दोषों से जिनका अंतःकरण रहित है, ब्रह्म भूतम, ब्रह्म जो परमात्मा है उस ब्रह्म के स्वरूप में एक ही भाव से जिनकी स्थिति हो गई है, इसको ऐसा एकदम निश्चय हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की ब्रह्म के स्वरूप में एक ही भाव से स्थिति है वो ब्रह्म भूतम। एवं योगिन, ऐसे योगी को या ऐसा जो योगी है उसे अनन्य परमात्मा को प्राप्त करता है। युंजन एवं सदात्मान योगी बीजकर्म से, युंजन एवं आत्मा, आत्मा को एवं इस प्रकार से उसे ब्रह्म के स्वरूप में लगाता रहता है, सदा सर्वदा ब्रह्म के स्वरूप में इस प्रकार से लगाता रहता है। कैसा योगी के मल विक्षेप आवरण आदि पापों से रहित, सुखी में ब्रह्म संस्पर्श मतम चंग सुख मस्ते, ब्रह्म स्पर्श माने ब्रह्म की प्राप्ति रूप अपंत जो अक्षय जो सुख है आनंद है उसको अनायासी सुख पूर्व की प्राप्त कर ले। इन सब बातों को ख्याल में ला करके हम लोगों को